पृष्ठ संख्या 261, उल्लास, समृद्धि, सुख, प्रेम, उज्ज्वलता और पवित्रता की इस अनुभूति में अगर निराला के वर्षा गीतों की तुलना किसी कवि से की जा सकती है तो वह मात्र रविंद्रनाथ हैं। वर्षा ऋतु रविंद्रनाथ को भी असीम उल्लास से भर देती है और इस उल्लास को बार बार अभिव्यक्त करके वह भी नहीं थकते। पृष्ठ संख्या 262, लेकिन यहाँ पर भी निराला और रविंद्रनाथ में एक विशिष्ट अंतर है। रविंद्रनाथ में आह्वान नहीं है, आकांक्षा नहीं है, संबोधन नहीं है, सिर्फ वर्षा के उल्लास के अद्वितीय चित्र हैं। रविंद्रनाथ इसकी ज़रूरत नहीं समझते कि वह बादलों को संबोधित करें, उसे झुलसी हुई पृथ्वी को हरा वसंत पहनाने के लिए बुलाएं। रविंद्रनाथ अपने मन का उल्लास तो व्यक्त करते हैं, लेकिन निराला की तरह उसे अपने कवि व्यक्तित्व से एकमएक नहीं करते। रविंद्रनाथ के लिए वर्षा अपरिमित उल्लास का साधन जरूर है, उनका संपूर्ण जीवन बिंब नहीं। निराला की तरह वर्षा के माध्यम से वह अपने जीवन को पाने या खोने का भाव कहीं नहीं व्यक्त करते। रविंद्रनाथ अपने व्यक्तित्व को पहाड़ की तरह ऊंचा किए हुए हैं और तिरछी गति से वर्षा जल को घाटियों में बहकर जाता हुआ देखते हैं, यानी कि रविंद्रनाथ के लिए वर्षा उनके काव्य व्यक्तित्व का प्रतिरूप नहीं है जैसा कि निराला में है। यहीं पर आकर मूल्यवत्ता की दृष्टि से निराला की वर्षा कविताएं आकार में छोटी होते हुए भी रविंद्रनाथ से श्रेष्ठ ठहरती हैं। इसके अलावा भी रविंद्रनाथ और निराला के ऋतु वर्णन में अंतर है। प्रारंभ में निराला में एक आवाहन, पुकार, आकांक्षा की अभिव्यक्ति अधिक है और फिर बाद की कविताओं में उपलब्धि का भाव। इस दृष्टि से निराला की वर्षा कविताओं में एक क्रमबद्ध सूक्ष्म विकास लगातार परिलक्षित होता है। रविंद्रनाथ के वर्षा गीतों में अनुभूति और संवेदनात्मक विकास का यह क्रम नहीं दिखाई देता, बल्कि इसकी जगह उल्लास के चित्र ही उन्हें बार बार घेरे रहते हैं। रविंद्रनाथ का उल्लास भी अति व्यक्तिगत है, उसमें दूसरों को शामिल करने के लिए वह निराला की तरह सर्वत्र सचेत नहीं दिखाई देते। दोनों कवियों की वर्षा धारणा का सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान अंतर यही है। निराला की कोई भी वर्षा कविता ऐसी नहीं है जिसमें वह संपूर्ण पृथ्वी, जनसमुदाय, मनुष्य, पशु पक्षी, वृक्ष, जंगल को शामिल करते हुए दिखाई न दे, बल्कि उनके उल्लास और आत्मतोष के भाव या उत्स यही है। इसके ठीक विपरीत रविंद्रनाथ धारासार वर्षा को अपने महल की खिड़की से बैठकर देखते हैं। वर्षा के विनाश पर भी इससे अधिक वे कुछ नहीं कहते। झरझर वर्षे वारी धारा, हाय पथवासी, हाय गतिहीन, हाय गृहहारा, फिरे वायु हाहा सरे, डाके कारे जनहीन, असीम प्रांतरे रजनी अंधारा। इस हाय पथवासी, हाय गतिहीन, हाय गृहहारा में एक तटस्थ करुणा अवश्य है, शामिल होने का भाव नहीं, क्योंकि रविंद्रनाथ पथवासी, गतिहीन और गृहहारा की पृष्ठ संख्या 263 अनुभूति से कभी गुजरे नहीं हैं। उनकी कविता में इसीलिए एक अभिजात करुणा अधिक झलकती है। वह निराला की तरह यह कहकर कि मैं रहूंगा ना गृह के भीतर, जीवन मेरे मृत्यु के विवर, बाहर मैदान में आकर उस पथवासी गृहहारा में खुद ब खुद शामिल नहीं हो सकते। वैसे भी यह रविंद्रनाथ के स्वभाव और संस्कारों के विरुद्ध पड़ता है। संस्कारों और जीवन स्थितियों की यही विपरीतता निराला की कविता को रविंद्रनाथ की व्यक्तिगतता से आगे एक सार्वजनीन मूल्यवत्ता प्रदान करती है। उसमें दूर से देखने और करुणा विगलित होने का भाव कम है। उस भार को झेलते सहने और असंशय भाव से उसमें शामिल होने का निर्णय अधिक। यही मूल्यगत अंतर और दूसरी कविताओं में भी अभिव्यक्त हुआ है। एक दुखी सर्वहारा जनसाधारण होने के नाते निराला ने बादल के विनाशकारी रूप को कभी चित्रित नहीं किया। उसका शुभ जीवनदायी रूप ही उन्हें प्रिय है, क्योंकि विनाश लीला से वह परिचित हैं। खिड़की से देखकर उसे चित्रित करना और बात है। और उसकी मार सहकर उसकी विनाश लीला से गुजरकर उसके बारे में लिखना दूसरी बात। जिसका घर तूफान में खंडहर हो गया हो वह उसे बनाने की बात अधिक सोचेगा कि हाय हाय करता रहेगा। इसीलिए निराला बादल के सर्वनाशी रूप को अपनी कविता में नहीं उठाते, इसीलिए वह रविंद्रनाथ की तरह सर्वनाश में अपने साधन धन के आने की बात कभी सोच भी नहीं सकते। इसीलिए वह रविंद्रनाथ की तरह सर्वनाश में अपने साधन धन के आने की बात कभी सोच भी नहीं सकते। साधन धन के आने में एक उल्लास व्यंजित है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि वह सर्वनाश में भी आए तो मेरे आह्लाद में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यह एक दार्शनिक उक्ति नहीं है तो आधुनिक पाठक के लिए यह दृष्टिकोण ही नितांत अमानवीय है। हृदय आमार ओए बुझितोर बैसाखी झड़ आसे बेड़ा भाडार मातन नामे उद्दाम उल्लासे तोमार मोहन एल भीषण वेशे आकाश ढाका जटिल केशे बुझ एल तोमार साधन धन चरम सर्वनाशे। शब्द संयोजन और कविता का दार्शनिक पक्ष सुदृढ़ रखने में रविंद्रनाथ बेजोड़ हैं। यह कुछ कुछ कबीर की सी उलट बांसी का प्रयोग है। इसे सीधे सादे अभिधार्य में ग्रहण करना रविंद्रनाथ के साथ ज्यादती ही होगी, क्योंकि यह पस से फटी हुई छाती वाली पृथ्वी के संताप का सर्वनाश भी हो सकता है, किंतु निराला के मन में किसी भी तरह सर्वनाश का यह बिंब उभरता ही नहीं। ठीक इसी संदर्भ की निराला की कविता द्रष्टव्य है। पृष्ठ संख्या 264। बादल में आए जीवन धन अपल नयन सुवास यौवन नौ देख रही तरुणी कोमल तन मरुत पुलक भर अंग प्रकंपित बार बार देखती चपल चित स्पर्श चकित कर्षित हो हर्षित लक्ष्य पार करती चल चितवन नौ अपांग शरहत व्याकुल उर आतुर वारिद वारिधार धार स्फुर उगा रहा उर्मे प्रेमांकुर मधुर मधुर कर कर प्रशमित मन बरस गई जलधार विश्व सृज शैवालिनी पा गई उदधि निज मुक्त हुए आ स्नेह के क्षितिज रूप स्पर्श रस गंध शब्द धन वर्षा में समाहित की हुई यह उतनी गूढ़ार्थ पूर्ण उक्ति नहीं है जितनी रविंद्रनाथ की है। रविंद्रनाथ अपने चित्र में अट्टहास करते हुए वर्षा चित्र से अधिक अनुप्रेरित हैं। संभवतः साइक्लोन को एक दार्शनिक रूपक पहनाया है उन्होंने। निराला का चित्र एक स्थिर शांत वर्षा चित्र है। संभवतः रिमझिम से शुरू होकर घनघोर वर्षा से होता हुआ फुहार तक पहुँचने वाला यहाँ पर भी कल्पना अत्यंत कोमल और व्यंजनापूर्ण है। प्रेम के संपूर्ण आवेश को लज्जा व्याकुलता के क्रम से वरदान की पूर्णता तक प्रतिफलित किया गया है। यहाँ पर भी वही पृथ्वी है उसी तरह सिकुड़ी हुई, लेकिन उसकी सिकुड़न में दुख उतना नहीं जितना बादल धन के प्रथम स्पर्श का अनभिव्यक्त उल्लास ध्वनित है। फिर धीरे धीरे वह उल्लास रूप लेता है, जन्म ग्रहण करता है। धीरे धीरे दग्ध अंतर शांत होता है, हरतिमा रच जाती है और पृथ्वी का रूप संपूर्ण हो जाता है। निराला के चित्र में धीरे धीरे पानी के रचते जाने का दृश्य है, घाटियाँ और खड्ड बनाते प्रलयंकारी साइक्लोन का नहीं। यह कहा जा सकता है कि इस अंतर पृष्ठ संख्या 265 का कारण उत्तर प्रदेश और पूर्व बंगाल की जलवायु है, और दोनों ही कवि अपने वर्षा चित्रों में मौलिक हैं। रविंद्रनाथ को बंगाल की परंपरा के अनुसार ही तांत्रिक बिंबों के प्रति भी बहुत आकर्षण है। अक्सर उनकी ऋतु कविताओं में दीप्त चक्षु जटाजूटधारी तेजोमय सन्यासियों का चित्र आता है। वर्षा कविताओं में भी जटाएं खोलकर उन्मत्त नृत्य करने अट्टहास करने डमरू बजाने का वर्णन बार बार आता है। सूक्ष्म अनुवीक्षण में कालिदास की तरह ही रविंद्रनाथ भी अत्यंत सजग हैं। बंगाल की धारासार वर्षा की अद्भुत विवरणात्मक चित्र उनकी कविताओं में पाए जाते हैं। एक आज वारी झरे झरझर भरा बादरे आकाश भांग आकुल, धारा कुथाओ नाधरे, शालीर वने थेके थेके, झड़ दोये दे हेके हेके, जल छुटे जाए ऐके बेके, माठेर परे, आज मेघेर जटा उड़िए, दिए नृत्य के करे। दो, पूब सागरेर पार हते, कोन एल परवासी, शून्ये वजाय घन घन, हाओ याय सन सन, सांप खेला बार बांशी। सहसा ताई कोथा हते कुल कुल कल स्रोते, दिके दिके जलेर धारा छुटे छे उल्लासी, आज दिगंते घन घन गभीर गुरु, डमरु रो हये छे ओय शुरु। ताई सुने आज गगन तले पले पले, दले दले अग्निबरन नाग नागिनी, छुटे छे उदासी। तीन, घन जटाए घटा घनाए, अंधार आकाश माझे, पाताय पाताय टुपुर टुपुर, नूपुर मधुर बाजे। चार, आधार अंबरे प्रचंड डमरू, बाजिल गंभीर गर्जने, नदीर कल्लोल वनेर मरमर, बादल उच्छल निर्झर निर्झर। पृष्ठ संख्या 266। ध्वनि तरंगिल निविड़ संगीते, श्रावण सन्यासी रचिल रागिणी, तड़ित शिखा छुटे दिगंत संधिया, भयार्त यामिनी उटे छे कंदिया, नाची छे एन कोन प्रमत्त, दानो मेघेर दुर्गेर दुयार हानिया। उल्लास के साथ साथ भयर्तता सर्वनाश के बिंब रविन्द्रनाथ को प्रिय हैं, लेकिन वर्षा के संदर्भ में भय की अनुभूति निराला में कहीं नहीं है। इसीलिए कहीं भी उन्होंने तांत्रिक बिंबों का सहारा नहीं लिया। शायद यह उनके स्वभाव, संस्कार और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के भी प्रतिकूल पड़ता। शायद भौगोलिक दृष्टि से भी निराला की वर्षा कविताओं में इस तरह के साइक्लोनिक बिंब अस्वाभाविक और काल्पनिक अधिक लगते। इसीलिए निराला के वर्षा बिंबों में उल्लास जनित मार्दव अधिक है, रससिक्त सांद्रता अधिक है, तोड़फोड़ और विनाश का तांडव बिल्कुल नहीं। उनका उल्लास पृथ्वी के भरे पूरे होने में व्यक्त होता है। उनका बिंब सूखता किसान और तपी हुई पृथ्वी है। इसीलिए निराला में आवाहन है, अट्टहासपुर आनंद की जगह, वर्षा उन्हें एक सांद्र तपापुत पवित्रता और जीवन से भर देती है, और फिर धीरे धीरे वह प्रार्थना की भूमि पर उतर आते हैं। एक पथ पर मेरा जीवन भर दो, बादल है अनंत अंबर के, वरस सलिल गति उर्मिल कर दो, तट हो विटप छांह के, निर्जन ससमित कलि दल चुंबित जल कण, शीतल शीतल बहे समीरण, कुंजे द्रुम विहंग गण वर दो। दो, मुक्ता दल जल बरसो बादल, सरिसर कल कल परसो बादल। तीन, गगन गगन है गान तुम्हारा, घन घन जीवन यान तुम्हारा। मेघों की जटाएं उड़ाकर नाचता हुआ डमरू की ध्वनि पर ताल लेता हुआ भैरव सन्यासी, बादलों का दरवाजा तोड़ता हुआ कोई प्रमत्त राक्षस अपनी भयार्त रागिनी। पृष्ठ संख्या 267। छोड़ने वाला श्रावण सन्यासी वर्षा के इन बिंबों से निराला परिचित ना रहे हो, ऐसी बात नहीं। बादल का विनाशकारी रूप भी एक सत्य है, जिसके लिए पंत ने कहा, आदि व्याधि बहु वृष्टि वात उत्पात अमंगल, वहीं बाढ़ भूकंप तुम्हारे विपुल सैन्य दल। निराला ने किया यह कि बादल के इस सर्वनाशी रूप को विप्लवी क्रांतिकारी कहकर एक नया और सर्वथा मौलिक और अभूतपूर्व रूप प्रदान कर दिया। इसके पहले अपनी संपूर्ण काव्य परंपरा में वर्षा का स्वर तो चित्रित था, उसका आवेग, उसका उल्लास, उसका प्रभाव, उसके द्वारा दिया गया जीवन और किया गया सर्वनाश। वह विरह दुख को प्रज्वलित तो करता था, वह प्रियाहीन राम के मन में डर भी पैदा करता था, या कालिदास के यक्ष को अपना विरह संदेश भेजने के लिए प्रेरित भी करता था। या वह एक कवि के शब्दों में, गगने अब घन मेघ दारुण सघन दामिन झलकई, कुलिश पातन शबद झन झन पवन खर तर बल गई, सजनी आज दुर्दिन भेल। बादलों की दारुणता, वज्रपात, तीखी हवा से युक्त दुर्दिन का चित्रण तो मिलता था, या रविंद्रनाथ को असीम उल्लास से भरकर अनेक रूपों, रंगों, उपमाओं, बिंबों में बांधने के लिए वह बादल अनुप्रेरित तो करता था, लेकिन हमारी पूरी परंपरा में कहीं भी इस बादल का चित्रण क्रांतिकारी के रूप में नहीं हुआ था। उसके घोर भैरव रूप को पहली बार निराला ने यह विप्लवी रूप प्रदान किया। उसे एक सर्वनाशकर्ता, भय उत्पादन करने वाले के रूप में नहीं, बल्कि असद शक्तियों के विनाश का वाहक बनाया। यहीं पर आकर निराला अपने सारे पूर्ववर्ती कवियों के आगे बढ़ जाते हैं। उन्होंने बादल के विनाशकारी रूप को एक सार्वजनिक मंगल की रचनात्मक दिशा की ओर मोड़ दिया। जो जीवन देता है वह अट्टहास करता हुआ सर्वनाश के रूप में कैसे आएगा? वह अट्टहास करेगा तो किसके खिलाफ? क्या उस धरती माँ के खिलाफ जिसके लिए रविंद्रनाथ ने कहा, पिपास आते बुक फाटा, तोर शुष्क कठिन धरा, या जिसके लिए निराला ने लिखा, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार। अट्टहास करेगा? नहीं, वह उनके लिए जिनका व्यापार रुद्ध है, जो अट्टालिकाओं में रहते हैं, उसके अट्टहास से वह नहीं डरेगा। जो अपनी जर्जर सूखी बाहें उठाकर पृष्ठ संख्या 268 जीवन पारावार कहकर उसे बुलाता है, उसका स्वागत करता है, उसके अट्टहासों से वह नहीं डरेगी। जिसे पंत ने कृषक बालिका कहा है, या जिसे निराला ने धान के बोझ से झुके हाथ हिलाते खिलखिलाते छोटे छोटे पौधे कहा है, या रविंद्रनाथ ने जिसे नया तृण दल कहा है, जिस पर बादलों की उड़ती हुई सघन छाया पड़ती है, और जिसकी आँखों में, हृदय में और प्राणों में सिर्फ एक ही संगीत गूंजता है, ऐसे छे एई कथा बले प्राण, ऐसे छे उठी ते छे एई गान नयने, ऐसे छे हृदय, ऐसे छे श्रेय। इसीलिए निराला में दुरंत झटिका, प्रमत्व दानव, भीषण भयाल, श्रावण सन्यासी, प्रचंड डमरू जैसे रविंद्रनाथ के बिंब नहीं आते, ना ही पंत के प्रकटा विकट महाआकार जैसे भूतों के कड़कने वाले बिंब ही आते हैं। निराला ने अत्यंत सचेत और सजग कलाकार की तरह बादल के इस सर्वनाशी रूप को एक रचनात्मक दिशा में संयोजित कर दिया है। उनका यह कथन मेरी इसी धारणा का साक्षी है। बादल वह नहीं जहाँ छिपा हुआ पविरे या और छवि।